हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। तारा सोचने लगी थी, मुझे कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे काली शक्तियों की चुड़ैल मलिका की सच्चाई और उस काली शक्तियों के मालिक अमित की सच्चाई अमन के सामने आ जाए। इसके लिए मुझे जल्दी ही कोई ना कोई स्टेप लेना होगा, वरना ये दोनों अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे। तारा परी मन ही मन सोच रही थी और कुछ ना कुछ करने का इरादा कर चुकी थी। वेल, जल्दी ही रात होने वाली थी तो अमन ने तारा को मैसेज कर दिया था कि वो उसे ऑफिस के बाहर ही मिले। सभी लोगों के जाने के बाद वो दोनों भी एक साथ घर के लिए निकलेंगे। अमन का मैसेज आने के बाद तारा के मुंह पर एक स्माइल आ गई थी और जल्दी ही वो अपना काम समेटने लगी थी। कुछ देर बाद जब धीरे धीरे ऑफिस के सारे लोग जाने लगे थे, अमित और मल्लिका भी एक दूसरे से आगे पीछे निकल चुके थे। तारा की पूरी नज़र उन दोनों पर ही थी। मल्लिका ने डिसाइड कर लिया था कि कुछ दिन तक वो दोनों बिल्कुल शांत रहेंगे, किसी तरह की कोई हरकत नहीं करेंगे, क्योंकि अगर उन्होंने एक के बाद एक स्टेप बंद को पाने के लिए उठा लिया तो जल्दी ही वो सब अमन की या तारा की नज़रों में आ सकते थे। लेकिन अभी वो किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहते थे, तो इसीलिए वो दोनों चुपचाप शांति से निकल लिए थे। लेकिन जाने से पहले अमित एक बार तारा की ओर देखना नहीं भूला था। धीरे धीरे तारा की खूबसूरती उसके दिलो दिमाग में बसती जा रही थी और तारा के लिए उसके दिल में एक जुनून सा बढ़ता जा रहा था। उसका दिल कर रहा था तारा को किसने किसी तरह से वो पा सके, और वैसे भी अमन उनकी चीज़ों पर नियत रखता तो उसकी बचपन से आदत थी, और जो कि अमन की इतनी खूबसूरत बीवी थी तो अमित का जलन के बारे में बुरा हाल था। इसीलिए उसने अमन की बीवी को ही अपना बनाने का फ़ैसला कर लिया था। वहीं अमन जल्दी ही अपना काम निपटाने के बाद तारा के पास आंखों ही आंखों में उसे बाहर आने का इशारा करता हुआ ऑफिस से बाहर निकल गया था। तारा परी ने अपना बैग उठाया और अमन के 3 मिनट बाद जैसे ही ऑफिस से बाहर जाने के लिए निकली, उसे अजीब सा एहसास होने लगा था। ऑफिस के अंदर उसे ऐसा लग रहा था मानो उसे कोई घूर रहा हो, जबकि एक एक करके पूरा ऑफिस खाली हो चुका था। तो अचानक से ये एहसास तारा को बेचैन कर रहा था और वो ऑफिस का दरवाज़ा खोलकर बाहर जाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी, क्योंकि अचानक से उसे अजीब सी वहशत होने लगी थी। जबकि उसे दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसे फिर भी ऐसा लगने लगा था कि मानो कोई उसके आसपास ही हो और बहुत करीब से उसे देख रहा हो। तारा का डर के मारे बुरा हाल हो गया था और उसका पूरा जिस्म पसीना पसीना हो गया था। और उससे पहले कि वो डर के मारे बेहोश हो जाती, तभी अमन वहां आ गया था, और जैसे उसने तारा को ऐसे हालात में देखा तो वो जल्दी से उसके पास पहुंचा, उसे गोद में उठा लिया था और गोद में उठाकर उसे बाहर लेकर आया था, और बिना उसे चौकीदार की परवाह किए वो उसे पानी पिलाने लगा था। जैसे उस चौकीदार की नज़र तारा और अमन पर पड़ी तो वो उन्हें हैरानी से देखने लगा था, क्योंकि ये चौकीदार वही था जिसने तारा के साथ रूडली बिहेव किया था जब उसने उसे अमन के बारे में पूछा था। अब इस तरह से उन दोनों को साथ में देखकर वो चौकीदार ना जाने क्या क्या सोचने लगा था। वो सोचने लगा था, ये मैडम तो सर के बहुत ही ज़्यादा करीब निकली, अगर उसने मेरी शिकायत साहब से कर दी तो मेरी नौकरी का तो आज आखिरी दिन हो सकता है। मुझे इस मैडम से उसे दिन इस तरह से बदतमीज़ी से बात नहीं करनी चाहिए थी, सीधे सीधे उनकी बातों का जवाब दे देना चाहिए था। कुछ देर बाद जैसे ही तारा को थोड़ा सा होश आया, अमन ने उससे पूछा था, तुम्हें आखिर हुआ क्या था, तुम इस तरह से डर क्यों गई थी, इतने पसीने के तुम डर के मारे बेहोश हो गई। अमन की बात सुनकर तारा ने ऑफिस की ओर मुड़कर देखा था, क्योंकि उसे अभी भी लग रहा था कि उसे कोई देख रहा हो। तब तारा ने अमन से कहा, पता नहीं ये अमन सर, मुझे क्या हो गया था, अचानक से पूरे ऑफिस में अंधेरा हो गया था और मुझे डरने लगा था। तब अमन को लगा शायद तारा को अंधेरे से फोबिया है, इसलिए एक तरह की बीमारी होती है, किसी न किसी को किसी न किसी चीज़ को लेकर, किसी को ऊंचाई से लेकर फोबिया होता है, किसी को गहराई से लेकर होता है, किसी को गहरे पानी को लेकर फोबिया होता है। तो अमन को लगने लगा था कि ज़रूर तारा को अंधेरे को लेकर फोबिया हो गया है, इस वजह से उसकी हालत ऐसी हो गई थी। तब अमन ने उसे समझाने की कोशिश की थी और कहा था, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ऐसा कहकर अमन ने तारा को गोदी में उठाया था और जल्दी ही उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर अपने घर की ओर लेकर रवाना हो चुका था। उन दोनों को जाते हुए वो चौकीदार हैरानी से देखने लगा था, क्योंकि अमन के आसपास आज तक कोई भी लड़की नहीं थी, केवल उसके पास उसके बॉडीगार्ड्स की फौजी रहा करती थी। और आज पहली बार अमन के साथ किसी लड़की को इतने क्लोज देखकर चौकीदार समझ चुका था कि ये लड़की कोई मामूली लड़की नहीं है, जरूर ये सर के लिए खास है। तभी अमन की गाड़ी के जाने के बाद उसके पीछे पीछे ठीक उसके बॉडीगार्ड की गाड़ी भी चल पड़ी थी। अमन पूरे रास्ते तारा के सर को अपनी गोद में लिए हुए ही बैठा रहा था और उसका डर दूर करने की कोशिश कर रहा था। आखिर तारा उसकी बीवी थी, उसकी जान थी, जिसने उसकी इज्जत के साथ साथ उसकी ज़िंदगी भी बचाई थी और अब उसके बच्चे को भी पैदा करने वाली थी। हालांकि वो अभी माँ नहीं बनने वाली थी, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं था कि वो माँ ही नहीं बनेगी। वो ज़रूर माँ बनने वाली थी जिस दिन उन दोनों के बीच प्रेम भाव से रिश्ता बनेगा। अमन ये बात सोच ही रहा था कि तभी तारा ने अमन को देखा। तारा अमन को प्यार से उसे ही देख रहा था। तारा ने भी अपन को बैक हक करते हुए आंखें बंद कर ली थी और कुछ सोचने लगी थी। अमन की बाहों में तारा को बहुत ही ज्यादा सुकून मिल रहा था और वो सोच रही थी कि काश वो पूरी जिंदगी इन्हीं बाहों में रह पाती। तारा को इस तरह से खुद से चिपकता हुआ देखा, अमन ने गाड़ी के पार्टीशन ऑन कर लिए थे और अचानक ही अमन तारा को किस करने लगा था ताकि वो उसके डर को थोड़ा दूर भगा सके। उसे थोड़ा प्यार करके वो उसके अंदर के डर को खत्म करना चाहता था, जो कि अंधेरे में वो डर गई थी। अमन ने तारा से कहा था वो आगे से कभी भी ऐसी गलती नहीं करेगा कि तुम्हें किसी अंधेरी जगह पर रहना पड़े। अमन की बातें सुनकर तारा को काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिल रहा था। अचानक ही अमन के होंठ उसके गर्दन पर चलने लगे थे। अमन के इस रिएक्शन से तारा भी मदहोशी होने लगी थी और धीरे धीरे तारा को अपने करीब पाकर अमन अब वाइल्ड होता जा रहा था। उसने उसके होठों के साथ साथ उसके गर्दन पर भी चूमना और हल्का हल्का बाइट करना शुरू कर दिया था, जिससे तारा को हल्का हल्का दर्द भी होने लगा था। लेकिन उसे प्यार के आगे वो दर्द कुछ भी नहीं था। धीरे धीरे अमन का हाथ तारा के सूट के अंदर से ही उसके बौभरे अंगों पर चलने लगा था और जैसे ही उसने उसका सूट ऊपर उठाकर उसे किस करना शुरू किया, तभी अचानक से ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी थी। गाड़ी रुकने पर वो दोनों एक दूसरे से अलग हो गए थे। तब अमन ने तारा की बाहों में गले में बाहर डालकर कहा था, अंदर चलते हैं और तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ तुम्हारे साथ। आगे से मैं तुम्हारा ये डरा हुआ चेहरा नहीं देखना चाहता हूँ।
तुम जिन महाराज अमन की बीवी हो, तुम्हें किसी से नहीं डरना है, तुम्हें एकदम स्ट्रांग बनना है। ऐसा कहकर अमन ने तारा के माथे पर किस कर दिया था और जल्दी ही वो तारा को अपनी गोद में उठाकर अंदर ले गया था। जैसे ही करिश्मा जी ने तारा को अमन की गोद में देखा तो वो चिंता से उसके पास आ गई थी और बोली थी, अरे अमन बेटा, कि तारा बेटी को क्या हुआ? तुमने इस तरह से उसे गोद में क्यों उठा रखा है? करिश्मा जी को फिक्र करता हुआ देखकर अमन ने तारों को सबसे पहले हाल में पड़े एक सोफे पर बैठा दिया था और अपनी मॉम का हाथ पकड़कर बोला था, मॉम, फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तारा बिल्कुल ठीक है। वो एक्चुअली आज ऑफिस में थोड़ा अंधेरा था सबके जाने के बाद और ये अंधेरे से डर गई थी। मुझे लगता है शायद इसको अंधेरे से फोबिया हो गया है, अंधेरे से डर गई है। तब अमन की बात सुनकर करिश्मा जी थोड़ा सा मुस्कुराई और तारा के सर पर हाथ फेरते हुए बोली थी, अरे तारा बेटी, तुम्हें डरने की क्या ज़रूरत है? तुम तो जानती हो ना तुम्हारा पति क्या है और क्या नहीं, तुम्हें इतना सा भी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तब करिश्मा जी ने अमन से कहा, बेटा, तुम तारा बेटी को अंदर कमरे में ले जाओ और उसे आराम करने दो। मैं तुम दोनों का खाना भी कमरे में ही भिजवाती हूँ, ठीक है? करिश्मा जी की बात सुनकर अमन ने हाँ में सर हिला दिया था और कहा था, ठीक है मॉम, मैं जाता हूँ। ऐसा कहकर तारा को फिर से गोद में उठाकर अपने कमरे की ओर ले जाने लगा था और अमन ने तारा को कमरे में ले जाकर सीधा बेड पर लेटा दिया था, क्योंकि गाड़ी में वो दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब आ गए थे तो उन दोनों के अंदर ही एक दूसरे को प्यार करने की चाहत जन्म ले चुकी थी। तो इसीलिए अमन ने धीरे से तारा के कानों में कहा था कि आज एक साथ नहा लिया जाए। जैसे ही तारा ने ये सुना, उसके कान और गाल एकदम से शर्म के मारे लाल हो चुके थे और उसने अपनी गर्दन झुका ली थी। तारा की गर्दन को झुका हुआ देखकर अमन ने उसकी हाँ का अंदाज लगा लिया था और उसने तारों को गोद में उठा लिया था और सीधा बाथरूम के अंदर ले गया था।